Blessed Savior, Om Namah Siddhavya, Om Namah Siddhavya, Om Shuddhatmane Namah, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vachayanam, Namo Loe Sauva Sahunam, Sahu Vachayriye, Arahante Vandi Unasi Devi, Je Panchaloga Vale, Vocham Bandhasa Samittam. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब हम यहाँ आठवीं पुस्तक जो तृतीय खंड है, बंध स्वामित्व विचय, उसकी चर्चा करते हुए अभी हम इसमें पृष्ठ संख्या है 17। पहले में पहले उन्होंने 10वें गुणस्थान तक बंद होता है ऐसी बात की, तो 16 प्रकृतियों की बात वहाँ उठाई थी, तो उन 16 प्रकृतियों के बंद का विच्छेद 10वें गुणस्थान में होता है। कौन सी 16 प्रकृति याद है? 5 ज्ञानावरण है, 4 दर्शनावरण है, 5 अंतराय, यशस कीर्ति और उच्च गोत्र। 10वें में उसकी बंद, यानी 10वें में विच्छित्य होते हैं, 10वें तक उसका बंद है। तो उसमें बहुत सारे प्रश्न उठे थे, तो वो बंद जो है, तो उदय पहले मिटता है क्या, बंद पहले मिटता है? एक प्रश्न तो ये था, क्या वे स्वोदयी है, स्वोदय से बनते हैं कि परोदय से बनते हैं? और एक प्रश्न था, क्या वह बंद सांतर है या निरंतर है? ये और एक प्रश्न उठाया। अब ये सांतर निरंतर संबंधी यहाँ चर्चा चल रही है, तो इन 16 की बात तो बाद में करेंगे, पहले सांतर बंध क्या है, निरंतर क्या है, ध्रुव क्या है, अध्रुव क्या है, अनादि बंध क्या है, सादि बंध क्या है, उसकी चर्चा आप उठा रहे। पहले जनरल इन्हें सामान्य से बात करके बाद में उन 16 प्रकृतियों की बात लेंगे। तो कल हमने देखा था कि कुछ प्रकृतियां तो निरंतर बंधने वाली है, निरंतर बंधने वाली में फिर बाद में उसमें और भेद किए थे। पहले में पहले ये ध्रुवबंधी उसमें बताए थे, ध्रुवबंधी होती है 47, यानी जब तक उन प्रकृतियों का विच्छेद नहीं हो जाए तब तक वो अनादि से बनती आई है, उसको कहेंगे ध्रुवबंधी। तो ध्रुवबंधी यानी वो तो निरंतर बंधने वाली है ही है। ऐसे भी कुछ प्रकृतियां हैं कि बंधना शुरू हुआ तो लगातार अंतर्मूर्त से कम बंधेगी ही, एक दो चार समय में बंद कर रुक गई ऐसा नहीं होगा, तो उनको भी निरंतर बंधी प्रकृतियां कहा है। तो यहाँ उन्होंने 54 प्रकृतियां निरंतर बंधी कही थी, अभी वो 54 हम रिपीट नहीं करेंगे, परंतु तो उसमें जो ध्रुवबंधी प्रकृति उन्होंने बताई थी वो ध्रुवबंधी प्रकृति कितनी हमने देखी थी? 47। उसमें ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, अब 9 लेना है क्योंकि अनादि से 9 के 9 बनते, हर समय 9 बनते हैं, वो जागृत अवस्था में हो या सोया हुआ हो, ये निद्रा नाम कर्म दर्शनावरण भी हर समय बंधेंगे, तो 9 के 9 बंधेंगे। कब तक? दूसरे गुणस्थान तक। पहले और दूसरे गुणस्थान वाले जीवों को दर्शनावरण की 9 प्रकृतियों का बंध हर समय होता है, इसलिए उसको ध्रुवबंधी कहा। वैसे 5 अंतराय, यानी 5, 5 और 9, ये 19 ये हो गए, एक मिथ्यात्व, 16 कषाय और भय जुगुप्सा, ये और 19 हुए, और बाकी तो नाम कर्म की है, तेजस कारमाण है, वर्णादि 4 है, अगरु लघु है, उपघात है और निर्माण है, ये जो प्रकृतियां हैं ये इनको ध्रुवबंधी प्रकृतियां कहा है। अब हम यहाँ से पेज नंबर 17 पर आए थे कि ये जो प्रकृति या ध्रुव बंदी कहा, तो उनका प्रकृति बंध जो है वो चार प्रकार से होता है, सादी भी, अनादि भी, ध्रुव भी और अध्रुव भी। जैसे हमने कहा अनादि से तो है ही है, तो सादी कैसे हो सकता है? तो कोई उपशम श्रेणी चढ़कर 11वें में गया और फिर बाद में फिर 10वें में आता है तो दोबारा उनका बंध शुरू होता है, तो उसको कहेंगे सादी बंध। उसी प्रकार अनादि से बनती चली है तो ध्रुव बंदी थी, फिर वो उपशम श्रेणी से चढ़कर फिर उतरा तो फिर वहाँ अध्रुव बंदी भी हो जाए, उसकी बात तो आएगी बाद में। यहाँ पर शंकाकार ने पूछा था निरंतर बंध और ध्रुव बंध में क्या भेद है। हमने देखा था निरंतर बंदी प्रकृतियों में ये 47 तो है ही है, इनके अलावा तीर्थंकर, आहारक, द्विक आदि अन्य भी प्रकृतियां हैं, चार आयु, जिसको निरंतर बंदी कहा था। निरंतर बंदी का अर्थ होता है एक बार बंधना शुरू हुआ तो अंतर मुहूर्त और आदि में आगे जो कुछ यथायोग्य काल होगा तो उतना तो उनका बंध होगा ही, वहां तक वो सतत बनती रहती है, उसको कहा है निरंतर बंदी। जैसे हमने देखा था कि उच्च गोत्र का नीच गोत्र का बंध कहाँ तक होता है, नीच गोत्र का बंध बराबर है 5वें तक उदय है बंध दूसरे तक, तो दूसरे गुणस्थान के बाद गोत्र कर्म बंधेगा कि नहीं? कभी कभी बंधेगा, हर समय बंध रहा है, यानी हर समय उच्च गोत्र ही बंध रहा है। पहले तो ऑप्शनल था, प्रतिपक्ष सहित था, किसी के उच्च गोत्र बनता था, कभी नीच गोत्र बनता था, अब ये तो उच्च गोत्र ही निरंतर बनता रहेगा। यानी जैसे जहां असाता का बंध रुक गया तो साता ही बनता रहेगा हमेशा हर समय, उसको भी निरंतर बंदी कहेंगे। देखो ये शंका और समाधान हम दोबारा पढ़ते हैं। शंका समाधान, समाधान में लिखा है जिस प्रकृति का पद यानी स्थान जिस किसी भी जीव में अनादि एवं ध्रुव भाव से पाया जाता है वह ध्रुव बंदी प्रकृति है, जो अभी हमने गिनाई थी 47। अनादि से पाया जाता है और हर समय सभी की सभी बन रही है, यानी 5 ज्ञानावरण में ऐसा ऑप्शनल नहीं कि कभी मति ज्ञानावरण बंधे और कभी श्रुत ज्ञानावरण, 5 के 5 हर समय बनते हैं, उसको कहते हैं अनादि से भी है और ध्रुव बंदी भी है। और जिस प्रकृति का पद नियम से सादी एवं अध्रुव तथा अंतर्मूर्त आदि, आदि में अंतर्मूर्त से बड़ा भी काल हो सकता है, आदि काल तक अवस्थित यानी वो बंध हर समय बंध बंध बंध, उसको अवस्थित यानी बंध होते रहना, उसको अवस्थित करना कंटिन्यूस, वह निरंतर बंध प्रकृति है। अब यहां से हम पढ़ेंगे, यहां तक तो हमने कल पढ़ा था, जिस जिस प्रकृति का बंध काल के समाप्त होने से बंध विच्छेद संभव है वह सांतर बंध प्रकृति है, यानी जहां जिसकी विच्छित्ति होती है उसके बाद के ऊपर के गुणस्थानों में उसका बंध नहीं होता और फिर दोबारा वो नीचे के गुणस्थानों में आएंगे तो फिर दोबारा बंध होगा, तो उसको सांतर बंध कहेंगे। असाता वेदनीय, हमने इसको देखने की भी कोशिश की थी कल कि असाता वेदनीय का बंध, उसकी बंध की विच्छित्ति 6ठे में होती है, तो 7वें में जाने पर तो बंधेगा नहीं, 7वें में तो साता वेदनीय ही बंधेगा और 6ठे या नीचे के गुणस्थान में साता या असाता दोनों में से बंध हो सकता है, तो उसमें अंतर पड़ सकता है, इसलिए उसको सांतर कहा। स्त्रीवेद, स्त्रीवेद का बंध पहले और दूसरे गुणस्थान वालों को ही होता है, ऊपर के गुणस्थान वालों का नहीं होता, तो ऊपर के गुणस्थान में जाकर कोई नीचे के गुणस्थान में आवे तो दोबारा स्त्रीवेद का बंध हो सकता है, तो उसमें अंतर पड़ गया। नपुसक वेद भी पहले गुणस्थान में बंध विच्छित्ति है उसकी, अरति शोक की बंध विच्छित्ति 6ठे गुणस्थान की है, नरक गति 4 जाति की बंध विच्छित्ति पहले गुणस्थान में है, अधस्तन 5 संस्थान, उसमें से नीचे का 6ठा नंबर का संस्थान जो है कौन सा है, याद है ना? वो सहनन है असंप्राप्त रूप है, कुंडक संस्थान उसके तो बंध विच्छित्ति पहले में है, और बीच वाले जो चार है स्वाति निग्रोध परिमंडल स्वाति कुब्जक और वामन, उसके दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छित्ति है, यानी उनका बंध पहले और दूसरे वालों को होगा, ऊपर के गुणस्थानों में नहीं होगा। वैसे ही पांच सहनन, ये जो भी आपने बताया असंप्राप्त रूपाटिका सहनन, उसके बंध विच्छित्ति पहले में होती है, और वज्र नाराज नाराज अर्ध नाराज और कीलित की बंध विच्छित्ति दूसरे में होती है। नरक गति प्रायज्ञान उपरी, वो नरक गति के साथ ये भी बनता है, उसकी भी बंध विच्छित्ति पहले में है, आतप की पहले में और उद्योत की दूसरे में। आताप भी लिखते कहीं आतप भी लिखते है, आधा वो आता है ना इसमें प्राकृत में, परंतु हिंदी में आतप लिखने की पद्धति है। अप्रशस्त विहाय गति, ये याद है कहाँ पर बंध विच्छित्ति है, दूसरे गुणस्थान में। हाँ, अप्रशस्त विहाय गति, वो गति शब्द वो विहाय के साथ लगाया हुआ है, नहीं तो यहाँ कोई गति नहीं समझ ले। फिर स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण, ये भी पहले गुणस्थान में इनकी बंध विच्छित्ति है। अस्थिर अशुभ दुर्भग, ये अस्थिर कहाँ पर देखा था? हाँ, अस्थिर अशुभ वगैरह हमने देखे थे ना, हाँ ये छठे में दोनों अस्थिर और अशुभ। दुर्भग दुस्वर और अनादेय, बंध की विच्छित्ति दूसरे में है, और अयशस कीर्ति, इसके बंध विच्छित्ति छठे में। उदय की बात नहीं, वो कन्फ्यूजन होगा मुझे पता है। हाँ उदय बराबर है, अरे बहुत याद किया आपने तो। देखो बार बार सुनते तो कुछ ना कुछ ख्याल में तो रहता है ना, भले गड़बड़ी हो जाए उसकी कोई परवाह नहीं है। ये 34 प्रकृतियां सांतर रूप से बनती हैं, शेष 32 प्रकृतियां सांतर निरंतर रूप से बनती है, उनका नाम निर्देश किया जाता है, वह इस प्रकार है। सभी नहीं होती ना, क्योंकि बंध विच्छित्ति कहाँ है उसकी बात होती है। अभी सांतर निरंतर में ऐसा भी ले सकते हैं ना कि ऑप्शनल भी है ना, साता या असाता बन रही है, तो वैसे भी अभी यहाँ क्या बताना चाहते हैं देखते हैं हम। देखो ये अभी यहाँ बता रहे साता वेदनीय, अभी ये इसकी विच्छित्ति कहाँ होती है 13वे में, यानी वहां तक तो बंधेगी, परंतु जहां साता और असाता का ऑप्शन है वहां उसमें अंतर पड़ेगा। ऐसे तो पहले से भी बन सकती है और 13वे तक बनती है, जहां तक बंध पॉसिबल है वहां तक बनती है। तो वे जो सांतर थी वो सांतर निरंतर ऐसा नहीं दिखाता, ये सांतर निरंतर क्यों कहा इनको, निरंतर यानी अभी बंध विच्छित्ति असाता वेदनी की बंध विच्छित्ति हुई छठे में, तो 7वे के आगे इसको निरंतर बंदी कहेंगे, और जहां ऑप्शन है वहां किसी को साता किसी को असाता, यानी उसी जीव को कभी साता कभी असाता बंधेगी। पुरुष वेद, नहीं नहीं नहीं, ये निरंतर यानी अंतर मुहूर्त तक तो बंधेगी ही बंधेगी, निरंतर किसका कहना। देखो सांतर कहा किसको, जिसका बंध विच्छेद संभव है उसको सांतर कहा, और निरंतर यानी वो लगातार बनती है, कम से कम अंतर मुहूर्त तो बंधेगी ही बंधेगी, उसको निरंतर कहा। तो ऐसे ही इसको सांतर निरंतर दोनों में लिया इसको। हाँ देखो दो नंबर पेज निकालना विषय परिचय का, पहले पेज से ही लेते हैं हम सांतर बंदी, पहले पेज पर सांतर बंदी कहा, देखो एक समय बंद कर सांतर बंदी निकाला एक नंबर के पृष्ठ पर प्रस्तावना में विषय परिचय में एक समय बंद कर द्वितीय समय में जिनका बंद विश्रांत हो जाता है वे सांतर बंदी प्रकृतियां हैं जो अभी हमने लिस्ट पढ़ी थी। अब दो नंबर के पृष्ठ पर जो प्रकृतियां जघन्य से भी अंतर मुहूर्त काल तक निरंतर रूप से बनती है वे निरंतर बनती है, यानी कम से कम एक दो समय के लिए नहीं, वो तो अंतर मुहूर्त तो बंधेगी ही, उसको निरंतर बंदी कहां, वे चौपन है, वो तो वो अभी हमने गिनाई थी 27, उसमें ध्रुव बंदी आयु चार तीर्थंकर वगैरह वगैरह हमने अभी अभी गिनाए थे ना उसको। अब सांतर निरंतर बंदी जो दो नंबर की विषय परिचय वाला पृष्ठ, अभी सांतर निरंतर बंदी किसको कहना, जो जगन्य से एक समय और उत्कर्षता यानी उत्कृष्ट से एक समय से लेकर अंतर्मूर्त के आगे भी बनती रहती है वे सांतर निरंतर बंदी प्रकृतियां हैं। कम से कम बंदी तो एक समय के लिए बनेगी और उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त से लेकर आगे के काल तक, उसको सांतर और निरंतर दोनों कहा। अब वे 32 हैं, तो ये एक समय कैसे घटित होगा, जहां ऑप्शन है ना साता या असाता, वहां उसका बंद पलट जावे तो एक समय बंद कर अन्य रूप से बंधना शुरू हो जाएगा उसका, उसको सांतर उसकी अपेक्षा का। देखो वे 32 है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वो तो बाद में पढ़ेंगे, अभी हम अभी वेदनीय तो बंद हर समय बंद रहा ही है, तो उसमें ऑप्शन तो दो ही है, साता या असाता। हम देखते हैं ना, ये तो आयु कभी कभी बनती है, बाकी मूल प्रकृतियों की अपेक्षा देखेंगे तो सात प्रकृतियां निरंतर बनती है और आयु सहित आठों का उदय निरंतर है, ये मूल प्रकृति की अपेक्षा बात है। अभी नाम कर्म में वेरिएशन है ना उदय की अपेक्षा, परंतु नाम कर्म है सच उदय तो रहेगा बंद भी रहेगा। अब उसमें से कौन सी बंद रही है उसमें ऑप्शन होगा, कोई एकेंद्रीय जाति का बंद करेगा, तीन इंच गति का बंद करेगा, उसके साथ सावर बांधेगा, उसमें फिर बादर होगा या सूक्ष्म होगा, वो वेरिएशन होगा उसमें, परंतु नाम कर्म उसको हर समय बंद रहा है। वैसे वेदनीय हर समय बंद रहा है, तो हर समय बंद रहा है तो वेदनीय में दो ही ऑप्शन है, साता बंधेगा या असाता बंधेगा। तो पहले गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान तक दो ऑप्शन में से कोई एक बंधेगी, परंतु उसके बंधेगी तो एक ही, एक समय में साता असाता दोनों का बंध नहीं होगा, परंतु छठे गुणस्थान के ऊपर सातवें से लेकर तेरहवें तक अकेले साता ही बंधेगा, यानी वेदनी का बंध तो रहेगा ही उसके, ख्याल है आपका, ऐसा ही प्रश्न था ना, उसके अलावा अन्य भी कोई बनती है कि? अन्य तो अन्य सभी कर्म बंधेंगे, जैसे नाम कर्म भी बन रहा है, हाँ वो उच्च नीच गोत्र जब तक उसकी बंधे की विच्छित्ति नहीं है तब तक, ये जो प्रतिपक्षी वाले हैं ना, हाँ जैसे पुरुष वेद का तीन वेद में से एक वेद बंधेगा, कहाँ तक, पहले गुणस्थान में तीन में से एक बंधेगा, दूसरे गुणस्थान में स्त्री या पुरुष वेद में से एक बंधेगा, तीसरे गुणस्थान के आगे पुरुष वेद ही बंधेगा, ये ऑप्शनल प्रकृतियां ऐसी है। तो अभी हम केवल इसकी परिभाषा देखेंगे, अभी हमने सांतर निरंतर बंदी देखा, उसके आगे लिखते हैं गति संयुक्त, यानी विवक्षित प्रकृति के बंध के साथ चार गतियों में से कौन सी गतियों का बंध होता है, उसके लिए उन्होंने उदाहरण क्या दिया, ये आगे आने वाली बात, परंतु उन्होंने विषय परिचय में दिया है तो सबको एक साथ पढ़ लेते। मिथ्या दृष्टि जीव पांच ज्ञानावरण को बांधता है, तो कौन से गति वाला बांधेगा मिथ्या दृष्टि, चारों ही गति वाला मिथ्या दृष्टि पांचों ज्ञानावरण का हर समय बांध रहा है, बराबर। अब उच्च गोत्र को उच्चा हुआ है, उसको उच्च करना। अभी उच्च गोत्र को किसके साथ बांध रहा है, इसके बात है। यानी चारों गतियों वाला बांधता है, इसी ने चारों गतियों के उदय के साथ बांध रहा है। अभी उच्च गोत्र वाला जो है वो कौन से गति के साथ है, नहीं कौन से गति वाला जीव बांधता है उसकी बात नहीं है, कौन सी गति बांध रहा है, किस गति के बंध के साथ उच्च गोत्र का बंध हो रहा है, ऐसा प्रश्न है। जैसे जो देव गति बांध रहा है तो उसके साथ वो नीच गोत्र का बंध नहीं करेगा, जिस समय देव गति का बंध हो रहा है उस समय उसके उच्च गोत्र का बंध हो रहा है, जिस समय मनुष्य गति का बंध कर रहा है उस समय उसके उच्च गोत्र का बंध हो रहा है, जिस समय नरक गति तिर्यंच गति का बंध हो रहा है तो उसके साथ नीच गोत्र उसका कॉम्बिनेशन वो उसके साथ होगा। हाँ देखो, तथा यश कीर्ति को नरक गति के बिना शेष तीन गतियों से संयुक्त बांधता है। यश कीर्ति का बंध जो नरक गति बांध रहा है वो अयश कीर्ति को बांध रहा है, उसके साथ की बात है। मनुष्य गति तिरंज गति देव गति जो बांध रहा है उसके साथ यश कीर्ति को बांध सकता है, यानी अयश को नहीं बांधता ये बात नहीं, परंतु उसको बांधेगा वो। हाँ एक इंद्रियों के साथ भी वो यश कीर्ति, उसके भी उदय पाया जाता है एक इंद्रियों को भी। देखो गति स्वामित्व किसे कहना, विवक्षित प्रकृतियों को बांधने वाला कौन कौन सी गतियों के जीव है यह प्ररूपित किया गया है। ये पहले मैंने जो कौन से गति वाला बांधता है कहा था ना, वो गति स्वामित्व वाला है, और किस गति के साथ बांधता है वो गति संयुक्त लिया उसको। देखो ये गति स्वामित्व में जैसे पांच ज्ञानावरण को मिथ्या दृष्टि से असंयत गुणस्थान तक चारों गतियों के जीव बांधते हैं। अब संयता संयत वाले कौन से गति के जीव ज्ञानावरण का बांधेंगे, तो संयता संयत दो ही गति में होता है, तिर्यंच और मनुष्य में। तो तिर्यंच और मनुष्य संयता संयत वाले ज्ञानावरण को बांध रहे हैं, और प्रमत्त से ऊपर गुणस्थान वर्ती दसवें गुणस्थान तक के जीव ज्ञानावरण को बांधेंगे, तो वो कौन से गति संयुक्त वाले कौन से गति वाले हैं स्वामित्व वाले, तो मनुष्य गति में ही वो गुणस्थान होते हैं। अभी अधवान, ये कौन से शब्द आने वाले उसकी बात करें। अधवान यानी हमने क्या देखा था याद है पहले, सीमा कहां से कहां तक, उसको अधवान कहा। विवक्षित प्रकृति का बंध किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक होता है यह प्रकट किया है। जैसे पांच ज्ञानावरण का बंध मिथ्या दृष्टि से लेकर सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान तक होता है, कहां से कहां तक। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहां से कहां तक होगा, चौथे से आठवें तक, ये उसकी सीमा कहलाती है। अब सादी बंध, ये अभी शब्द आया था ना सादी अनादि, तो सादी बंध किसको कहना, विवक्षित प्रकृति के बंध का एक बार विच्छेद हो जाने पर, यानी उसकी विच्छित्ति होने पर, जो उपशम श्रेणी से भ्रष्ट हुए जीव के पुनः उसका बंध प्रारंभ हो जाता है वह सादी बंध है। जैसे दसवें गुणस्थान तक हमने देखा ना, दसवें गुणस्थान में ज्ञानावरण के बंध की विच्छित्ति होती है, तो उपशम श्रेणी चढ़कर जो ग्यारहवें में गया है उसको ज्ञानावरण का बंध नहीं है, एकमात्र वेदनीय का बंध चल रहा है उसको, साता वेदनीय का, तो उसके बंध रुक गया है। ग्यारहवें में से दसवें में आते ही वो ज्ञानावरण का बंध दोबारा शुरू हो जाएगा, तो वो उसका सादी बंध कहलाएगा। यही उन्होंने उदाहरण भी दिए। अब अनादि बंध, विवक्षित कर्म के बंध के विच्छित्ति स्थान को नहीं प्राप्त हुए जीव के जो उसका बंध होता है वह अनादि बंध कहा जाता है। यानी अपनी अपनी विच्छित्ति बंध की विच्छित्ति नहीं होती है तब तक वो अनादि से बनता ही चला आ रहा है। जैसे किसी जीव ने दसवा गुणस्थान प्राप्त नहीं किया है, अनादि से अभी वो बंध ही कर रहा है ज्ञानावरण, पांचों ही ज्ञानावरण का, क्योंकि उसने कभी वो उपशम श्रेणी चढ़कर बंध रहित हुआ नहीं था। हम मान लेते कोई ऐसा जीव है ना, तो उसको हम कहेंगे ये अनादि बंध है, अनादि से ही बनता चला गया। अन्य किसी की बात की, जैसे अभी हमने स्त्री वेद देखा, दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छित्ति होती है, तो कोई जीव कभी अभी पहले दूसरे गुणस्थान को छोड़कर गया ही नहीं ऊपर, तो वो अनादि से उसको बनता आ रहा है। वो ऊपर के गुणस्थान में जाएगा और फिर दोबारा नीचे आकर फिर दोबारा बंद करेगा, उसको हम सादी बंध कहेंगे। यानी स्त्री वेद का जो अनादि से बंध होता था, अब सादी में गिनेंगे उसको। वैसे वहां भी वो प्रतिपक्ष वाला है, यानी उसमें सांतर भी कहेंगे उसको, है ना। वो निरंतर की है। हाँ नहीं बनती है, नहीं अन्य कुछ उसकी जो अन्य टाइप की बनेगी कभी, नहीं नहीं सांतर अलग है और सादी अलग है। सादी कब कहेंगे, बंदे विच्छित्ति हो गई है, ऊपर के गुणस्थानों में गया और फिर दोबारा नीचे आए, तो उसको हम कहेंगे सादी। जैसे अभी ये स्त्री, ये जो असाता वेदिनी वगैरह जो देखे हमने, वो एक समय भी बनती है फिर दोबारा बंद रुक जाता है, ऐसे हो सकते हैं उसमें। ये देखो अनादि बंध अभी हमने देखा था, उसका उदाहरण देखते हैं। जैसे अपने बंध विच्छित्ति स्थान रूप सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय से नीचे सर्वत्र पांच ज्ञानावरण का बंध है। अब ध्रुव बंध, अभव्य जीवों के जो ध्रुवबंधी प्रकृतियों का बंध होता है वह अनादि अनंत होने से ध्रुव बंध कहलाता है। उनमें तो ज्ञानावरण का बंध कभी मिटने ही वाला नहीं है, तो उसको अनादि अनंत ध्रुवबंधी है ना, जो ध्रुवबंधी प्रकृतियां जो मिथ्यात्व है, सोलाकषाय है, भयजुगुप्सा है, ज्ञानावरण दर्शनावरण है और अंतराय है। हमने अभी 47 ध्रुवबंधी प्रकृतियां गिनाई थी, अभव्यों में तो अनादि अनंत उन सब पर 47 की 47 बंधेगी, इन एडिशन अन्य भी बंधेगी, ये 47 तो बंधेगी ही, ऑप्शनल जो है, कभी साता बंधेगी, कभी असाता बंधेगी, हम उसमें भी कभी पुण्य प्रकृति बंधेगी, कभी पाप बंधेगी, जहाँ जो ऑप्शन है, परंतु ये तो निरंतर ही बंधेगी, पाप करे या पुण्य करे, इसको ध्रुव प्रकृति कहते। ये ध्रुवबंधी प्रकृतियां 47 है, अभी हमने 2-3 बार इसको गिनाया था, उसको नहीं पढ़ेंगे। अध्रुव बंध, भव्य जीवों के जो कर्म बंध होता है वो विनश्वर होने से अध्रुव बंध है। अध्रुवबंधी प्रकृतियां कौन सी है, ध्रुवबंधी प्रकृतियों से शेष यानी बची हुई 73 प्रकृतियां अध्रुवबंधी है। अभी उन 73 में से भी 11 है वो अप्रतिपक्ष वाली है। अप्रतिपक्ष ने तीर्थंकर के लिए कोई प्रतिपक्ष नहीं है, ऐसा नहीं कि दो में से एक बंधेगी, बंधेगी तो वो लगातार बंधेगी। आहार द्विक है, 4 आयु है, क्योंकि ऐसा वो ऑप्शनल नहीं बनती है, एक आयु बंधेगी तो वही बंधेगी, उसमें ऑप्शन नहीं होगा। और अगुर लघु उपघात नहीं नहीं इसमें कौन सी बंधी,
चार आयु अगर बनती है
वही आयु बंधेगी, वही आयु बंधेगी लगातार। हाँ जब भी बंधेगी तब उसी आयु का बंध करेगा। एक बार मनुष्य आयु बंधी है तो दूसरी बार ऑप्शनली अन्य आयु बंधेगी, ऐसा नहीं होगा, उसी आयु का बंध करेगा। मनुष्य आयु पहले बांधी है तो मनुष्य आयु ही बांध, क्योंकि आयु तो एक भव के लिए ही बनती है।
वो में पड़ी
ये साइड स्ट्रोक नहीं होता उसमें उसके परिणाम ही ऐसे ही हो गए उस आयु संबंधी, क्योंकि अभी तो उस वो भूल चूक उसने सुधार ली तो अभी कोई अन्य आयु बांधेगा तो ऐसे नहीं होता गति में होता है ऐसा, गति अलग अलग बनती है अलग अलग समयों में, और जिसका उदय है उस रूप से वो टर्न होके उदय में भी आती रहती है। हाँ देखो इसमें हमने देखा था ना तीर्थंकर आरग्द्विक चार आयु और आतप उद्योत वगैरह ये जो प्रकृतियां हैं उसमें आती हैं। अब इनमें ध्रुवबंदी प्रकृतियों का जो ध्रुवबंदी है उसमें सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव चारों प्रकार का बंध होता है। जो ध्रुवबंदी है उसमें सादि कैसे घटित होगा, उपशम श्रेणी में ऊपर गया और फिर नीचे आया तो वो सादि, अनादि है ने अभी जो ऊपर के गुणस्थानों में गया ही नहीं अभी तक तो अनादि बंध चला रहे। ध्रुव है ने वो तो अनादि अनंत उसको होता रहेगा तो उसको ध्रुव कहेंगे, और ध्रुव है ने भव्य की अपेक्षा वो उसकी बंध विच्छित्ति हो गई तो उसको हम अध्रुव कहेंगे। तथा शेष प्रकृतियों का सादि व अध्रुव बंध ही होता है। शेष है ने अभी जो 73 प्रकृतियां देखी उनमें सादि भी है और अध्रुव भी है। यहाँ उन्होंने टेबल करके दिया है, वो खाली टेबल पढ़ने से कुछ नहीं, हम आगे पढ़ेंगे अपना विषय जो चलेगा। देखो अभी हम 18 पृष्ठ पर आए हैं। दूसरे लाइन में हमने देखा था शेष 32 ये 34 प्रकृतियां सांतरबंदी की देखी थी और शेष 32 प्रकृतियां सांतर निरंतर रूप से बनती है उसका भी नाम निर्देश ने कथन करते हैं। वही इस प्रकार है साता वेदनीय पुरुष वेद हास्य रति तिर्यक गति मनुष्य गति देव गति पंचेंद्रिय जाति औदारिक शरीर वैक्रियक शरीर समचतुरस्र संस्थान औदारिक शरीर अंगोपांग वैक्रियक शरीर अंगोपांग वज्र शब्द वज्रनाराज सहनन तिर्यक गति प्रायोग्यानुपूर्वी मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी देव गति प्रायोग्यानुपूर्वी परघात उच्छ्वास प्रशस्त विहाय गति त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर शुभ सुभग सुस्वर दुस्वर आदेय यशस्कीर्ति नीच गोत्र और उच्च गोत्र ये सांतर निरंतर रूप से बंधने वाली प्रकृतियां है। नरगति को पहले लिया ना, देखो ये नरगति नरगत्यानुपूर्वी हमने वो सांतर बंधने वाले में लिया था, सांतर बंधी में लिया उसको। अभी हमने जो सांतर बंदी की लिस्ट पढ़ी थी देखो 17 नंबर पृष्ठ पर और बाकी तीन गति इसमें सांतर निरंतर इसमें ले ली उन्होंने। अभी उसकी गाथा बताते हैं। अभी क्या है विषय अभी अभी शुरू हुआ है ना तो अभी हमको इतना ध्यान में नहीं आ रहा है। हाँ भले हम वो पढ़ लेते हैं लिस्ट सारी तो स्ट्राइक नहीं हो रही बराबर है। जैसे हम बंध विच्छित्ति उदय विच्छित्ति शुरू में कितना डिफिकल्ट लगता था अभी तो आपको याद हो गया, ऐसे ये भी समझ में आने लगेगा। देखो गाथा हम पढ़ेंगे 17 और 18 एक साथ। इथिन उंसय वेदा जाइ च उक्कम असाध निरय दुगम आदा उज्जो वारई सोगा सुह पंच संठाणा पंचासुह संगणना विहाय गई अपसत्थी आन्ने थावर सुमा सुह दस चौतीस सिंह सांतरा बंधा। देखो 34 को ये दो गाथाओं में उन्होंने समा दिया। सांतर बंधने वाली प्रकृतियां जो है, स्त्री वेद, नपुसक वेद, जाति चार, जाई चौकम लिखा था ना ऊपर, असाता वेदनीय, निरय दुगम यानी नरक द्विक यानी नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी, आतप उद्योत, अरति शोक, अशुभ पांच संस्थान, पांच अशुभ सहनन। देखो पहले वाले को शुभ संस्थान और शुभ सहनन कहते हैं, नीचे के पांच को अशुभ कहते हैं। हमने पहले लिस्ट देखी थी ना, पाप प्रकृतियां और पुण्य प्रकृतियां, ये नीचे के पांच संस्थान और पांच सहनन ये अशुभ यानी पाप प्रकृति है, और ऊपर की एक एक जो है संस्थान और सहनन वो प्रशस्त कहो या शुभ प्रकृति कहो या पुण्य प्रकृति कहो। तो यहाँ पांच पांच लिया, अप्रशस्त विहार गति तथा स्थावर सूक्ष्म एवं अशुभ आदि अन्य दस, ये दस कैसे लिए, स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण फिर अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादेय और अयशस कीर्ति, ये दस हो गए। इस प्रकार ये 34 प्रकृतियां यहां सांतर बंध वाली है, ये सारे अशुभ प्रकृतियां ही ले ली उसमें थे। देखो अब 19 नंबर का, ये सांतर और निरंतर दोनों रूप से बंधने वाली, पहले हमने लिस्ट देखी थी उनके नाम देखे थे, अब ये गाथा रूप से बता रहे। सांतर निरंतर एणय बत्तीस वसे सियाओ पयड़ियो बज्जंती पच्चयाणम दुपयाराणम वस गयाओ। शेष 32 प्रकृतियां मूल व उत्तर भेद रूप दो प्रकार प्रत्ययों के वशीभूत होकर वशी बराबर करना, इसको क्या कहते हैं, शेष 32 प्रकृतियां। अभी हमने वो 32 के नाम भी यहां देखे थे ना, ये तीन गतियां हैं वगैरह वगैरह जो, तो कहते मूल व उत्तर भेद रूप दो प्रकार, हमने मूल और उत्तर ऐसे भेद देखी थी ना, किसकी भेद चल रही है, ऐसे दो प्रकार के प्रत्ययों के वशीभूत होकर, प्रत्यय किसे कहना, हाँ आश्रव को, आपको मालूम है कोई, हाँ प्रत्यय कौन कौन से है, मिथ्यात्व अविरति, हाँ प्रमाद को नहीं भी गिनोगे तो भी कषाय और योग, ये चार प्रत्यय कहलाते हैं, ये तो मूल भेद हुए उसके। और उत्तर भेद मिथ्यात्व है वो पांच प्रकार का है, अविरति वो 12 प्रकार की है, कषाय है वो कितने प्रकार के, 25 प्रकार के, और योग 15 प्रकार के योग है, ये उसको कहते उत्तर भेद। यहाँ लिखा देखो, मूल व उत्तर भेद रूप दो प्रकार प्रत्ययों के वशीभूत होकर, दो प्रकार है मूल भेद रूप और उत्तर भेद रूप, यानी प्रत्ययों के वशीभूत होकर, यानी ये आश्रवों के, ये बंध क्यों होता है, आश्रवों से वो उसके हेतु है, जीव उसके वश हो जाता है, प्रत्यय ने वो पुराने जो द्रव्य कर्म के उदय में जीव के जो भाव होते तो उनको, वो पुराने द्रव्य कर्म के उदय को यहाँ प्रत्यय कहा है, आश्रव कहा है। हम तो नए आने वाले कर्मों को इतना ही आश्रव आते हैं वो आश्रव ऐसा समझते ना, तो वहां तो पुराने कर्मों के उदय को वहां प्रत्यय कहा है। देखना समय सार में भी ये बात आई है 164 पासर गाथा में, देवलाली में मैंने एक बार वो ऐसा कुछ 4-5 दिन का लिया था तो सबको पूछा था मैंने, कल आप ये देख के आना कि आश्रव किसको कहना, पुराने कर्मों के उदय को कि नए आने वाले कर्मों को, तो सब बहुत खलबली मची थी सबने जाकर वो पंडितों को भी पूछा था ये सांतर निरंतर रूप से बनती है, यानी जीव प्रत्ययों के वश होकर ये नया कर्मों का बंद करता है, बंद करता है वो तो राग द्वेष रूप परिणमित होता है और वहां कर्म बनते हैं, ये तो हम तो समय सारादि में हमने देखा था, निमित्त से कुछ नहीं होता, कर्म अपनी योग्यता से वहाँ बनते हैं और यहाँ जीव अपने में अपने राग रूप भाव से परिणमित होता है। फिर भी यहाँ निमित्त की भाषा है, कर्णानुयोग में जीव ने कर्म बांधे, ऐसा ही कहेंगे। आगे द्रव्याश्रव किसे कहना, पुराने कर्मों के उदय को वहाँ कहा है आश्रव। भावाश्रव तो जीव में ही है ना, उसमें नया पुराने की बात ही नहीं है। अभी वर्तमान में जो उसके राग हो रहे उसी को हमने भावाश्रव कहा, परंतु द्रव्याश्रव में किसको लेना है उसकी बात चल रही थी, क्योंकि उसके निमित्त से यहाँ भावाश्रव हो रहे हैं ना, तो पुराने कर्मों के उदय को कहा है वहां पर। ये अपेक्षा से हमें समझना चाहिए, यानी नए आने वाले को आश्रव नहीं कहते वो बात नहीं है, प्रत्यय जो है जिसके निमित्त से यहाँ राग द्वेष भाव हो रहे हैं ये तो हमें मालूम है, नए आने वाले के निमित्त से तो राग द्वेष नहीं हो रहे, राग द्वेष के निमित्त से नए आ रहे हैं। अभी जो राग द्वेष है उसमें निमित्त अगर हमने ढूंढना है तो पुराने कर्मों के उदय के। देखो यहाँ 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय प्रकृतियाँ निरंतर बनती हैं, क्योंकि ये प्रकृतियाँ ध्रुवबंधी हैं। अब यहाँ किसकी बात चल रही है, उन्होंने प्रश्न पूछा था ये 16 प्रकृति, ये निकालो, देखो प्रश्न कहाँ है, क्योंकि हम सामान्य चर्चा में उलझ गए थे तो हम मूल प्रश्न भूल गए। 16 पृष्ठ पर दूसरे पैराग्राफ के शुरू में उक्त 16 प्रकृतियाँ, ये उक्त 16 प्रकृतियाँ कहाँ से देखी, पेज नंबर 5, ये पेज नंबर 7, सूत्र नंबर 5 सातवें पृष्ठ पर, हम भूल जाते हैं ना। देखो पांचवें सूत्र में कौन कौन सी प्रकृतियाँ देखी, 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, यशस कीर्ति उच्च गोत्र और 5 अंतराय। वहाँ पूछा था इनका बंधक कौन है और अबंधक कौन है, मिला 5वां नंबर का सूत्र, तो 10वें गुणस्थान तक वो बनती है ऐसे हमने देखा था। और फिर उसमें बहुत सारी चर्चा हुई थी कि उसका उदय पहले मिटता है कि बंध पहले मिटता है, क्या होता है, तो कौन कौन सी प्रकृतियों का उदय पहले बंध पहले, वो उसके बाद चर्चा हुई थी स्वोदय से बनती है कि परोदय से बनती है। उसके बाद अभी हम 16 पृष्ठ पर उसको पूछा था प्रश्न, ये जो 16 प्रकृतियाँ हैं उनका बंध क्या सांतर है क्या निरंतर है, क्या सांतर निरंतर है, तो हमें प्रश्न पूछा मगर सांतर कहना किसको ये पता नहीं था, इसलिए उन्होंने टोटल लिस्ट बता दी हमको, इतनी प्रकृतियाँ सांतर है, इतनी निरंतर है और इतनी सांतर निरंतर है। अब उनमें से हमको ये प्रकृतियाँ कैसी है उसको देखना है, तो वो उसकी बात अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उसका उत्तर जो है इन 16 में से ये बात बता रहे हैं अभी। उसमें से 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय प्रकृतियाँ निरंतर बनती है क्योंकि ध्रुव बंधी है, तो दर्शनावरण के 9 में से 4 को ही रखा और उनको ध्रुवबंदी कहा है। 10वें गुणस्थान तक ये बनती है, पहले तो हमने देखा था कि 9 के 9 बनती है, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल ज्ञान। और किसको छोड़ना है, 5 निद्रा को, उसको क्यों यहाँ सांतरबंदी या उसको ध्रुवबंदी में क्यों नहीं लिया है, क्योंकि उनकी बंध विच्छित्ति दूसरे में हुई थी, स्थान वृद्धि निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला की बंध विच्छित्ति दूसरे में हुए, और निद्रा और प्रचला की बंध की विच्छित्ति 8वें के पहले भाग में हुए, परंतु ये जो 4 प्रकृतियाँ तभी भी उनकी विच्छित्ति हुई तो भी ये बंधी चली आई अनादि से, इसलिए इनको ध्रुवबंदी कहा। जब तक बंध की विच्छित्ति नहीं हो रही है तब तक ये ध्रुवबंदी है, तो 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय तो निरंतर बंदी है, क्योंकि वो ध्रुवबंदी है, जो ध्रुवबंदी है वो निरंतर बंदी तो होती ही। यश कीर्ति को जीव सांतर निरंतर रूप से बांधते हैं, अभी उसके सांतर निरंतर कहने का कारण भी बताते हैं। देखो आगे लिखा है, इसका कारण यह है कि मिथ्या दृष्टि से लेकर प्रमत्त गुणस्थान तक यह प्रकृति सांतर बनती है, क्योंकि यहाँ इसकी प्रतिपक्षी अयश कीर्ति का बंध संभव है। यानी सांतर किसको कहेंगे, जो प्रतिपक्षी कर्म है उनमें शांतर बंध संभव है, जैसे हमने देखा ना, हाँ प्रतिपक्ष यानी हाँ उसके लिए ऑप्शनल कोई है, ऑप्शनल ऑप्शनल बंध है ना, जैसे तीन वेद में से एक वेद बनता है तो वो हम उसको जहाँ तीनों ही बनते हैं ऐसे पहले गुण स्थान में हम क्या कहेंगे, या पुरुष वेद बंधेगा या स्त्री वेद या नपुंसक वेद, तो वहाँ वो तीन में से कोई एक बंधेगा। दूसरे गुण स्थान वाला स्त्री वेद पुरुष वेद में से कोई एक बंधेगा और उसके ऊपर पुरुष वेद ही बंधेगा निरंतर नवे गुण स्थान के पहले भाग तक, तो बाद में उसको निरंतर कहेंगे, पहले दूसरे गुण स्थान में शांतर कहेंगे, क्योंकि वो प्रतिपक्षी में से एक बनती है। कल हमने इसे प्रतिपक्षी कर्म गिनाए थे, अभी तो हमने ये तो ध्रुवबंदी तो बहुत सारी ये ज्ञानावरण दर्शन अंतराय वगैरह हो गई ना, तो प्रतिपक्षी में किस किस को गिना था, तो मोहनीय में से हास्य रति या शोक रति और तीन वेदों में से एक, यानी ये सात प्रकृतियां है, दो युगल और तीन वेद, ये सात है वो प्रतिपक्ष सहित है, बराबर। अब बाकी जो है वो तो हम अघाती में ढूंढेंगे, तो अघाती में साता या असाता, उच्च गोत्र या नीच गोत्र, आयु को तो हमने वो निरंतर बंदी में डाला है तो उसको प्रतिपक्षी में नहीं लेना है। तो अभी रहे नाम कर्म, तो नाम कर्म की 51 प्रकृतियां प्रतिपक्ष सहित है, गति है, जाति है, शरीर है, शरीर में भी आहारक को नहीं लेना, वैक्रेक शरीर अंगोपांग और औदारिक शरीर अंगोपांग, फिर छह संस्थान है, छह सहनन है, जो कुछ है वहां पिंड प्रकृतियां हैं उन सबको लेना उसमें प्रतिपक्षी वाले में। आतप उद्योत तो प्रतिपक्षी नहीं होते, वो सिंगल सिंगल प्रकृतियां हैं, उसको प्रतिपक्षी में, जो जोड़ी जोड़ी वाली है या ग्रुप वाली जो है, जैसे प्रशस्त या अप्रशस्त विहार गति, चार गति में से एक गति, चार अनुपूर्वी में से एक अनुपूर्वी, उसको प्रतिपक्षी कहते हैं। त्रस या बादर, स्थावर, ये त्रस या स्थावर, बादर या सूक्ष्म, इस तरह से पर्याप्त या अपर्याप्त, जोड़ी में से कोई एक है उसको प्रतिपक्षी कहेंगे। ऐसे 51 प्रकृतियां हैं, ये नाम कर्म की 51, मोहनीय की 7 और वेदनीय की 2 और गोत्र की 2, इस तरह से वे प्रतिपक्षी वाली हैं। तो यहाँ क्या लिखा, ज्ञानावरण, 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय को तो वो निरंतर कहा क्योंकि वो ध्रुवबंदी है। यहाँ शांतर है क्या निरंतर इसकी बात चल रही, यहाँ ध्रुव अध्रुव की बात नहीं है, परंतु उसका कारण मतलब जो ध्रुव होती है वो तो निरंतर होती ही है। अब यश कीर्ति की बात कहे, यश कीर्ति और उच्च गोत्र दो ही रहे ना, अभी 10वें गुण स्थान में बंध विच्युति होने वाले, तो यश कीर्ति क्या है, शांतर है क्या निरंतर है, तो जब तक यश और अयश में से बनती है ऑप्शनली तब तक तो शांतर है, तो छठे गुण स्थान तक अयश की अयश का बंध हो सकता है, तो दोनों में से एक बंधेगी तो वहां शांतर है, विनोद, और बाद में 7वें गुण स्थान से आगे 10वें तक निरंतर है क्योंकि एकमात्र उसी का बंध होगा। देखो यहाँ लिखा ना, प्रमत्त गुण स्थान से ऊपर 4थी लाइन में यश कीर्ति प्रकृति निरंतर बनती है क्योंकि वहां प्रतिपक्ष प्रकृति के बंध का अभाव है, अन्य प्रकृति क्योंकि वेदनीय, अगर वेदनीय का बंध हर समय है तो उसमें ऑप्शन दो ही रहते हैं, साता या असाता, इसलिए जहां असाता का बंध नहीं है वहां एकमात्र साता का बंध हर समय चल रहा है, इसलिए यश कीर्ति बंध से शांतर निरंतर है, यानी बंध की अपेक्षा वो शांतर निरंतर है। अब उच्च गोत्र को हम ढूंढेंगे क्या होगा, वो नीच गोत्र कहां तक बन सकता है, दूसरे तक, यानी दूसरे तक ये शांतर वाली होगी, दोनों में से कोई एक बंधेगी, और तीसरे गुण स्थान से ऊपर 10वें तक निरंतर उच्च गोत्र का ही बंध होगा तो वह निरंतर होगी। तो उच्च गोत्र को मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि जीव शांतर बांधते हैं, क्योंकि उन दो गुणस्थानों में प्रतिपक्ष प्रकृति का बंध संभव है। अब ये ख्याल में आ रहा है ना, सांतर निरंतर क्यों का। परंतु उपरीतन गुणस्थान यानी तीसरे गुणस्थान से और ऊपर जीव उसे निरंतर बांधते हैं, क्योंकि वहां प्रतिपक्ष प्रकृति का बंध नहीं रहता। तथा भोग भूमियों में सर्व गुणस्थानवर्ती जीव यानी पहले दूसरे वाले भी केवल उच्च गोत्र को ही निरंतर बांधते हैं। उसका कारण भी क्या है, वहां पर्याप्त काल में देव गति को छोड़कर अन्य गतियों का बंध नहीं होता। ओहो, वो भी पर्याप्त काल लगाया हो। इसलिए उच्च गोत्र भी बंध से शांत निरंतर है। ये और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिए, क्योंकि हमें मालूम है भोग भूमि वाले जीव मरकर तो देवगति में ही जाने वाले, मिथ्या दृष्टि हो या अन्य कोई भी हो, सम्यक दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि भी देवगति में ही जाते हैं। सम्यक दृष्टि सौधर्म ईशान में ही जाते हैं और मिथ्या दृष्टि वो भुवनत्रिक में जाते हैं। तो देवगति के साथ यश कीर्ति बनती है, उस अपेक्षा से उन्हें भोग भूमि वालों की अपेक्षा उसको निरंतर कहेंगे। अब आगे के प्रश्न पूछ रहे हैं। ये प्रश्न कहाँ कहाँ हमने देखे थे, 9वें पृष्ठ पर कहाँ थे सभी प्रश्न, कहाँ थे, 8वें पृष्ठ पर थे, देखो 8 नंबर के। अभी प्रश्न नंबर 10, प्रश्न तो संख्या उसके बाद लिखी है, क्या सनिमित्तक बंध है या क्या अनिमित्तक बंध है, उसकी अभी चर्चा चलेगी। अब यहाँ आते हैं हम अपने पृष्ठ संख्या 19 पर। इन प्रकृतियों का क्या सप्रत्यय अर्थात सकारण बंध होता है, क्योंकि बंध में कारण कौन है, तो प्रत्यय। तो क्या सप्रत्यय ने सकारण बंध होता है या क्या अप्रत्यय अर्थात अकारण बंध होता है, इस पृच्छा का उत्तर कहते हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, उसमें से एक एक जोड़ी ले रहे थे टाइम। तो कहते उसका उत्तर क्या, इन प्रकृतियों का बंध सकारण होता है, अकारण नहीं। यहां पहले प्रत्ययों की प्ररूपणा की जाती है, यानी प्रत्यय सकारण यानी कारण सहित। अब यहाँ कारण यानी निमित्त कारण को ही चर्चा चल रही है, तो बिना कारण के बंध नहीं होता है। प्रत्ययों के पहले भी शब्द आया था, प्रत्ययों के वशीभूत होकर, तो ये प्रत्यय क्या चीज है उसकी बात अभी करेंगे पहले। हाँ, आप बताओ अकारण बंध कोई होता है क्या नहीं होता। ये योग तो होगा ही ना, अकारण कौन सा होगा। ख्याल है ना, यानी बंध में तो उसके हेतु तो होगी ही, बिना हेतु के होंगे तो सिद्धों को भी होना चाहिए। तो अभी ये मूल प्रत्यय और उत्तर प्रत्यय जो बताए थे यहाँ बताए जा रहे हैं, प्रत्ययों की थोड़ी चर्चा यहाँ करेंगे। वह इस प्रकार है, वो 20 पेज पर अभी हम आए। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, ये चार मूल प्रत्यय हैं। हमने देखा था ना, ये प्रमाद को उसी में गिनते हैं कषायों में, तो मूल प्रत्ययों में चार ही प्रत्यय गिनते हैं, मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग। मूल प्रत्यय क्यों कहा, इसके आगे और हम भेद करेंगे तो उसको कहेंगे उत्तर प्रत्यय। जैसे हम मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति कहते हैं ना, उत्तर यानी उसके सब डिविजन्स। अब उत्तर प्रत्ययों का निरूपण मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों में लाकर करते हैं। लाकर करते हैं, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में कौन कौन से हो गए उसके उत्तर भेद। तो मिथ्या तो कितने प्रकार का होगा, अविरति कितने प्रकार की होगी, या अभी मिथ्या अभी जो मिथ्या तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में इन प्रत्ययों में से कौन कौन से प्रत्यय हो गए, सभी हो गए, जो चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि है उसमें कौन कौन से मिथ्या तो नहीं होगा परंतु अविरति है, कषाय है, योग है। पांचवे गुणस्थान वाले को अविरति निकल जाएगी, पांचवे वाले को 12 प्रकार की अविरति है। पांचवे गुणस्थान वाले को कितनी अविरति है और कितनी विरति है, 12 में से कितनी जाएगी, उसका नाम है संयमा संयम, विरता विरत उसका नाम है, विरत भी है अविरत भी है। हाँ, एक ही जाएगी। कौन सी? षटकाय में से एक त्रसकाय की हिंसा का वो त्यागी है, परंतु अभी पांच थावर कायों की हिंसा का त्यागी नहीं है और ना ही विषयों के। वो कल शाम को बात आई थी ना, हाँ, इंद्रिय संयम भी नहीं है उसके। तो 11 प्रकार की अविरति है उसके, और फिर कषाय भी है और योग भी है। मुनिराज जो है छठे सातवें में, अभी उसमें अविरति बिल्कुल नहीं है, कषाय है और योग है। उसमें कषाय में भी अभी संज्वलन, उसमें भी एक एक गुणस्थान में कौन सा कषाय जाता है हमें बहुत मालूम है अच्छी तरह से, है इस तरह से ये बात है। तो ये दसवें तक कषाय है, पर कषाय से होने वाला बंध नौवे तक है, बाद में यानी मोहनीय का बंध। कषाय से होने वाला ज्ञानावरण दर्शन, अभी जो हमने 16 प्रकृति देखी उसका बंध तो दसवें में भी है, और बाद में योग है, तो योग से होने वाला वो साता वेदनीय का बंध अकेला रहेगा, इसलिए इनको बंध के हेतु कहा है, प्रत्यय कहा ना इसको। तो हर एक गुणस्थान में कौन कौन से है उसकी चर्चा करेंगे। एकांत, अज्ञान, विपरीत, वैनयिक और सांशयिक मिथ्यात्व के भेद से मिथ्यात्व पांच प्रकार का है, यानी एकांत मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, वैनयिक यानी विनय मिथ्यात्व। वो मालूम है कैसा होता है? हाँ, कुदेव सुदेव सबको एक लाइन में खड़ा करके सबको सबकी विनय कर रहा है ना, जिसको आजकल वो बहुत भला समझते हैं। हाँ, वही नहीं कहा। और संशय के नहीं, संशय मिथ्यात्व यानी ये सच है कि वो अभी उसका निर्णय ही नहीं हो, तो संशय मिथ्यात्व उसके। कौन कौन? अज्ञान विपरीत में भी चला जाएगा, क्योंकि उसी को सच मान रहा है। विपरीत में क्या है? उल्टे को सच्चा, वो यही ठीक है ऐसा मानता है, वो विपरीत हुआ। और संशय में, अरे ये सच है कि ये सच है, यानी उसका वो पेंडुलम की तरह इधर से उधर वो माइंड उसका सेट नहीं होता। हाँ, ये उसको संशय, क्या कहते हैं, किसी भी तीर्थंकर को पैर पड़े तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, अच्छा, श्वेतांबर दिगंबर कोई भी चलेगा। हाँ, तो वो उनसे भी उसी को आंखें लगाएंगे। ये अभी क्या श्राव, यानी यहाँ भक्तों की बुद्धि का दीवाला निकल गया है ना, क्या कहेंगे अभी उसको, भगवान का स्वरूप ही मालूम नहीं है। हाँ ना, भगवान भी श्वेतांबर दिगंबर होते रहते और उनसे भी अपने को और भला, यानी सर्वधर्म समभाव, हम सब धर्मों को सरीखा मानते हैं। और वो बड़प्पन आजकल तो समाज में ऐसे लोगों को बड़ा कहलाते हो, ये सब अच्छा है, सब सबको मानता है। किसका वर्णन? ये तो लोगों एक ही मूर्ति को करते हैं, तो ये लोगों का कितना भूल है उसकी, यानी आप क्या करें जानो। और उनकी महत्ता आती है जहाँ चक्षु निकाले, चलो 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 जाओ, क्या करें। अभी ऐसे भी होता है ना, हर जगह वो चंदन फूल ये वो सब रखे हुए होते हैं। तो दर्शन करना, हाँ तो फिर दर्शन करना है तो जब प्रक्षाल हो रहा है तब जाओ। हम सब लोग पूछते क्या करें, दर्शन कैसे करें, जब प्रक्षाल हो रहा है तब जाओ। प्रक्षाल के बाद पहुंच लेते मूर्ति, तो चंदन लगाने के लिए कुछ 5 मिनट का अवसर लगेगा कि नहीं लगेगा आपको, तो दर्शन कर लो। देखिए मूर्ति में दोष नहीं है, जो कर रहे उनकी मान्यता में दोष है। प्रतिष्ठित मूर्ति है तो वो तो मूर्ति, तो मूर्ति को देखें तो भगवान जैसी है। अभी उसको आप कुछ भी कलंकित कर दो ऊपर से क्या करे, तो मूर्ति थोड़ी कुछ होती है। चल तो ये तो मिथ्या तो 5 प्रकार का है। इनमें अभी उसको एकांत मिथ्यात्व किसे कहना उसकी बात चल रही है। इनमें सत ही है, असत ही है, ये ही लगाया हो, नहीं की अपेक्षा नहीं, स्यात सत है ऐसा नहीं कहा। कोई ऐसे मान्यता वाले थे ना एकांत मत, वो सतवादी ही होते, कोई असतवादी ही होते हैं, जिसको वादी कहते हैं। नए के कथन में तो नए तो अनेकांतवाद होता है, उसमें से किसी एक धर्म की मुख्यता से जो कथन होता है उसको नए का कथन कहलाते हैं, और जो एक ही को लेकर वो ही सर्वथा कर देता है उसको वादी यानी एकांतवादी कहलाते हैं। जैसे द्रव्य कैसे है, नित्य भी है अनित्य भी है, वो भी लगाया। कोई कहेगा नित्य ही है तो वो एकांतवाद हो गया। बौद्धों ने कहेगा असत ही, वो अनित्य ही है, पर्याय की अपेक्षा भी नहीं, अपेक्षा लगाते ही नहीं, वो अपेक्षा उनमें होती ही नहीं है, ये ही सर्वथा लगा देते तो ये एकांतवादी कहलाते। इसलिए वो नए चक्र में भी लिखा ना, जितने नए हैं उतने नयवाद भी होते हैं, और उतने वादी यानी उसको उतने उतने अपेक्षा, जो हम अपेक्षित कथन करते हैं जितनी अपेक्षा उनसे, उतना ही सर्वथा मानने वाले अनेक अलग अलग मत है, मतांतर है, वो सारे एकांतवादी हो जाते हैं। अपेक्षित है तो वो तो स्यादवाद हो गया, स्यादवाद और उनका एकांतवाद। देखो इनमें सत ही है, असत ही है, अनेक ही है, सावयव ही है, स अवयव यानी अवयव वाला ही है, निरवयव यानी बिना अवयव का, निरवयव ही है, सावयव यानी उसके भेद करते हैं ना, भेद वाला, गुण पर्यायों वाला, या जो कुछ है जिस अपेक्षा से भेद करने हैं, तो बस भेद ही होते हैं, अभेद होता ही नहीं। कोई कहेगा, कोई कहेंगे उसके भेद होते ही नहीं, अभेद ही है, तो बिना अपेक्षा के ही लगाते हैं सर्वथा, वो सारे एकांत मतवादी हैं। नित्य ही है अनित्य ही है, तो नित्य ही वह वाले वो कुटस्थ ही मानते द्रव्य को, पर्याय वाला मानते ही नहीं। जैसे वैदिक है, आत्मा शुद्ध है, उनका अगर मत सुनेंगे ऐसा लगता है अरे ये तो जो शुद्धने का विषय जो हम समय सार में है ये वही बात बता रहे, अरे अपने जैसी बात है, बिल्कुल ऐसा लगता है, परंतु वो ही लगाया उन्होंने सर्वथा वैसा, दूसरे पक्ष का स्वीकार ही नहीं है उनके, पर्याय पक्ष को मानते ही नहीं वो, और बस जगत ही यानी आत्मा ही है, बाकी सब माया है, माया यानी कुछ सत्य है ही नहीं, वो झूठी है सब, ऐसा कहते हैं। इसलिए वो सारा ही एकांतवाद हो जाता है। इत्यादिक एकांत अभिनिवेश को, अभिनिवेश यानी मान्यता, हाँ, अभिप्राय, एकांत यानी किसी एक अंत यानी धर्म को सर्वथा कर दिया उन्होंने, एकांत अभिनिवेश को एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। नित्यानित्य विकल्पों से विचार करने पर जीवा जीवादि पदार्थ नहीं है, अतएव सब अज्ञान ही है, ज्ञान नहीं है, ऐसे अभिनिवेश को अज्ञान मिथ्यात्व कहते हैं। क्या कहते हैं, नित्य है अनित्य है इत्यादि जो विकल्प, उस पर विचार करने पर जीव अजीव आदि पदार्थ नहीं है, अज्ञान ही है, ज्ञान है ही नहीं, ऐसा कहते हैं, इसको अज्ञान मिथ्यात्व कहते हैं। अभी विपरीत मिथ्यात्व किसे कहना, यानी उनकी मान्यता उल्टी है, पूरी विपरीत ही है। हिंसा, अलीक वचन, अलीक वचन यानी झूठ, हाँ असत्य वचन, चौर्य, मैथुन, परिग्रह, ये सब पांचों ही पापों के नाम लिए उन्होंने। राग द्वेष, वो द्वेष करना ऊपर की मात्रा नहीं दिख रही है, राग द्वेष मोह और अज्ञान, इनसे ही मुक्ति होती है। ऐसा अभिनिवेश विपरीत मिथ्यात्व कहलाता है। जानते हैं, जैसे किसी को देवी के सामने कुछ आप किसी जीव की हत्या कर दो, जिसको बलि कहते ना, तो अपने को मुक्ति मिल जाएगी, विपरीत मिथ्यात्व। ऐहिक एवं पारलौकिक सुख सभी विनय से ही प्राप्त होते हैं, न कि ज्ञान दर्शन तप और उपवास जनित क्लेशों से। ऐसे अभिनिवेश का नाम वैनयिक मिथ्यात्व है। विनय से ही प्राप्त होते हैं, भगवान के सामने माथा टेक दो डायरेक्ट तो हो जाएगा, हाँ लौकिक भी और पारलौकिक भी। सर्वत्र संदेह ही है, निश्चय नहीं है, ऐसे अभिनिवेश को संशय मिथ्यात्व कहते हैं। यानी वो सभी जगह वो संशय ही है, ऐसा कुछ पक्का नक्की कुछ है ही नहीं है, ऐसा मानने वाले हो संशय वाले। इस प्रकार ये मिथ्यात्व प्रत्यय पांच है। असंयम प्रत्यय, इंद्रिय असंयम, इंद्रिया संयम लिखा ना, यानी इंद्रिय असंयम और प्राणी असंयम, तो प्राण्य हुआ, नी प्लस अ न्य होगा, प्राण्य संयम के भेद से दो प्रकार का है, यानी इंद्रिय असंयम और प्राणी असंयम। उनमें इंद्रिय असंयम स्पर्श रस रूप गंध शब्द और नौ इंद्रिय जनित असंयम के भेद से छह प्रकार का है। नौ इंद्रिय का अर्थ पता है, हाँ पीना, नौ इंद्रिय ने मन, छह गिनने ना पांच इंद्रिय और छठा मन, ये इनके जनित यानी उनके द्वारा उत्पन्न हुए ऐसे भेद से ये असंयम छह प्रकार का है। प्राणी संयम, प्राणी असंयम की बात है पहले, प्राणी असंयम, पृथ्वी अप तेज वायु वनस्पति और त्रस जीवों की विराधना, यानी पृथ्वी कायिक अप कायिक ऐसे ऐसे, जिसको षटकायिक जीव कहते हैं, पांच स्थावर कायिक है और एक त्रस कायिक है, इन जीवों की विराधना से उत्पन्न असंयम के भेद से छह प्रकार का, यानी ये छह प्रकार का असंयम। सब असंयम के सब भेद बारह होते हैं, यानी दोनों ही असंयम के भेद सब मिलकर कितने हुए, बारह। कषाय प्रत्यय, पहले असंयम प्रत्यय देखे हमने, कषाय प्रत्यय, उसके पहले मिथ्यात्व प्रत्यय भी देखेंगे ना हम, सोलह कषाय और नौ नौ कषाय के भेद से पच्चीस प्रकार का है। यह कषाय प्रत्ययों का योग पच्चीस हुआ। योग प्रत्यय, मन वचन और काय योग के भेद से तीन प्रकार का है। मनोयोग चार प्रकार का है, सत्य मनोयोग, मृषा मनोयोग, सत्य मृषा मनोयोग और असत्य मृषा मनोयोग, यानी अनुभय जिसको कहते हैं, उभय और अनुभय। वचन योग भी सत्य वचन योग, मृषा वचन योग, सत्य मृषा वचन योग और असत्य मृषा वचन योग के भेद से चार प्रकार का है। काय योग, औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिक वैक्रिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्मण काय योग के भेद से सात प्रकार का है। इनका सर्वयोग 15 होता है. सर्वयोग है ना, टोटल. यहाँ योग का अर्थ होता है एडिशन, उसकी टोटल. योग का प्रकरण है और सभी का योग भी 15 है ना, सबकी टोटल. सब प्रत्ययों का योग, देखो यहाँ भी योग शब्द आया, यानी सभी प्रत्ययों की टोटल कुल कितने होते हैं, जोड़ कितना है उसका, 57 है. शास्त्र में आता है ऐसे 57 प्रकार के आश्रव है. इनमें से आहारक और आहारक मिश्र को अलग कर देने पर उन्होंने बताया था कि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में प्रत्यय कितने हैं उसकी चर्चा करेंगे. तो सभी प्रत्यय हमने ले लिया, परंतु सभी प्रत्ययों में से क्या सभी योग हो सकते 15 के 15? कौन से योग नहीं हो गए? अभी हमने पढ़ा, हाँ, आहारक और आहारक मिश्र, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग तो छठे गुणस्थानवर्ती जीवों के होता है. इन जीवों के नहीं हो सकता, तो वे नहीं होंगे उनके. तो इनमें से आहारक और आहारक मिश्र को अलग कर देने पर मिथ्या दृष्टि से संबंध रखने वाले प्रत्यय 55 होते हैं. 57 टोटल है, उसमें से 2 गए, 55 है यहाँ पर. 55 होता है हिंदी में. वो क्या है, मराठी में 55 कहते ना, तो वो 1 हो गया उसका. इन प्रत्ययों से मिथ्या दृष्टि सूत्रोक्त 16 प्रकृतियों को बांधता है. देखो इनका बंधक सकारण होता है क्या अकारण होता है, इसकी चर्चा कर रहे हैं. तो जो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान वाला बांधता है इन गुणों प्रकृतियों को, 16 प्रकृतियों की बात चल रही है, तो वहां कितने कारण हैं उसमें 55 कारण हैं. अभी सासादन वाले के कितने कारण होंगे, मिथ्यात्व कम, हाँ मिथ्यात्व जाएगा और अनंतानुबंधी जाएगा. अनंतानुबंधी नहीं जाएगा, दूसरे गुणस्थान की बात चल. एक मिथ्यात्व जाएगा यानी 5 कम हो जाएगा उसके, 50 हो जाएगा. इस तरह से गिनना है. हाँ अलग अपेक्षा से ये प्रत्यय वाली बात एक बार चलाई थी हम, क्या नहीं, ये तो मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, बराबर है. मिथ्यात्व गुणस्थान में तो ये इसमें से 2 कम है, यानी वो मिथ्यात्व गुणस्थान में सबकी टोटल, यानी ये भी है ये भी ये सब है, इसमें से 2 कम, यानी 55 हो गई टोटल. सासादन गुणस्थान में मिथ्यात्व नहीं है, अविरति सब, ये 12 अविरति कषाय सभी है ना, यानी 12 अविरति 25 कषाय और योग भी वो 2 छोड़कर 13, कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे. इस तरह से गिनना है हमको ऊपर तक. तीसरे गुणस्थान वाले को मिथ्यात्व नहीं है, अविरति 12 के 12 है, कषाय अनंतानुबंधी नहीं अभी, तो इसमें से 25 में से 4 गए, 21 रह जाएंगे. और योग, हाँ योग 13, उसमें यस 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 बहुत अच्छा मिश्र का योग भी नहीं. कारमान का योग भी चलेगा निकल जाएगा और 2 मिश्र भी चले जाएंगे, है ना. पहले 2 निकाले थे और 3 गए, ये 10 हो जाएंगे. और इसमें भी वेदों में भी सब लेने का नहीं, यो उदय तो सबका है. देखो 43 हम पढ़ते पढ़ते पढ़ेंगे आगे, देखो हाँ चौथी लाइन इन प्रत्यय नहीं तीसरी लाइन इनमें से पांच मिथ्यात प्रत्ययों को अलग कर देने पर 50 प्रत्यय होते हैं। इन प्रत्ययों से सासादन समय दृष्टि सूत्रोक्त 16 प्रकृतियों को बांधता है, और भी प्रकृतियों को बांधता है। यहाँ प्रश्न 16 प्रकृतियों का बंधक कौन करता है और कितने हेतु से करता है, तो मिथ्या दृष्टि जीव तो 55 प्रत्ययों से करता है, 55 से, और दूसरे गुणस्थान वाला इन्हीं प्रकृतियों का बंधक 50 से करता है, ये बात हो रही है। इन 50 प्रत्ययों में से औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र, कारमांड और चार अनंतानुबंधी प्रत्ययों को अलग कर देने पर 43 प्रत्यय होते हैं। 43 इन प्रत्ययों से सम्यक मिथ्या दृष्टि 16 प्रकृतियों को बांधता है, ये अन्य को भी बांधता है। उन 16 को किसके कारण बांधता है इसकी बात चल रही है, क्योंकि वे 16 जो प्रकृतियां हैं वो पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक बांधती है, तो कहाँ कौन से प्रत्ययों से वो बांधता है उसकी बात चल रही है, यानी कौन से गुणस्थान में कौन से प्रत्यय होते हैं उसकी चर्चा चल रही है। अब इन 43 प्रत्ययों में से अभी और किसको निकाला, हाँ, अभी मिलाना पड़ेगा औदारिक मिश्र, क्योंकि चौथे गुणस्थान वाले को औदारिक मिश्र होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, क्योंकि जो मनुष्य में जन्मता है समय दर्शन के सहित या तीरेंचों में भी जन्मता है तो उसको औदारिक मिश्र, देवनारकियों में जन्मने वाले को वैक्रिक मिश्र है, कारमान भी होगा, विग्रह गति में भी चौथे गुणस्थान के साथ कोई जाएगा, हाँ आहार द्विक चौथे में नहीं होगा, वो छठे में होगा, उसमें से औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कारमान प्रत्ययों को मिला देने पर 46 प्रत्यय होते हैं। देखो यहाँ तो हमने 55 फिर 50 फिर 43 देखे थे, है ना, उसमें तीन मिला देना तो चौथे गुणस्थान में, ये गुणस्थान चौथा, तीन मिलाए तो 46 हो गए, बराबर। अभी पांचवे गुणस्थान में क्या जाएगा, इसमें से एक अविरति जाएगी 12 में से, हाँ तो एक ये है, ये रहेगी, और कषाय जो हमने 25 देखे थे उसमें से चार तो पहले ही चले गए थे, हाँ अभी और चार चले जाएंगे, यानी क्या, हाँ इसीलिए 11 लिए ना, 12 अविरति थी उसमें से 11 अविरति रही है, एक अविरति को हमने निकाल दिया त्रस संबंधी, तो कषाय 21 थे तो 21 में से और चार गड़ गए, 17 रह गए, और योग वो आहार के बिना दो, हाँ 13 मिश्र तो हो सकते यहाँ, अरे सॉरी पांचवे की बात चल, मैं चौथी की सोच रही हूँ, मिश्र योग यहाँ भी नहीं रहेंगे, कारमण भी नहीं और मिश्र भी, यानी औदारिक औदारिक आहारक आहारक मिश्र पहले ही निकाले थे, 13 हुए थे, वो तीन मिलाए थे औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कारमण, वो भी निकालना है तो ये 10 हो जाएगी। एक मिनट, 46 में से 9 निकाले, कितने, वैक्रेक भी निकालना, हाँ हमने केवल वैक्रेक मिश्र को निकाला, वैक्रेक को भी निकालना है, 9 हो, मैं वही सोचती थी पांचवे से लेकर वो 9 हो जाते क्या, कुछ रह गया, वैक्रेक का योग भी नहीं रहेगा, तीरेंज और मनुष्य में ही होगा, हाँ देखो अभी हम पढ़ेंगे, इन प्रत्ययों से यानी उनमें से नहीं ये तो हो गया ना, वो पढ़ना बाकी है ना। इन प्रत्ययों से असंयत समय दृष्टि विवक्षित 16 प्रकृतियों को बांधता है। इन असंयत समय दृष्टि के प्रत्ययों में से अभी ये 46 में से किस किस को निकालना है? 4 अप्रत्याख्यानावरण, औदारिक मिश्र, वैक्रेक और वैक्रेक मिश्र दोनों को निकालना है, कार्मण और त्रय असंयम ने त्रस असंयम चाहिए, त्रया संयम लिखा है वो त्रसा संयम, ऊपर क्या है? एक असंयम पच्चेसु अवनी देसु अवशेषा बावीस, हाँ 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 तसा त्रया हुआ है, त्रसा चाहिए, त्रस असंयम त्रसा संयम कहना उसको, ऊपर लिखा ना तसा संयमेसु। इन 9 प्रत्ययों को कम कर देने पर 37 प्रत्यय होते हैं। यह इंटरेस्टिंग विषय है ना। ये 37 हुए पांचवे गुणस्थान के। अभी हम देखेंगे ना, क्योंकि हम भूल करते तो और ज्यादा ख्याल में रहता है ना, जैसे अभी हमने वैकरिक संबंधी भूल रह गई थी हमारी। अब अविरति कितना रहेगा छठे गुणस्थान में? एक भी नहीं अविरति, मिथ्या तो भी नहीं, कषाय और कितने कम हो जाएंगे? हाँ हाँ हाँ, वो योग में ऐड हो जाएंगे। हाँ हाँ, यानी अभी 13 रहेंगे और योग में 11 हो जाएंगे ना, आहार द्विक उसमें बढ़ेंगे तो 11 हो जाएंगे। बराबर है। हाँ, देखो पहले तो हमने देखा ये जो 37 थे संयता संयत के, इन प्रत्ययों से संयता संयत विवक्षित 16 प्रकृतियों को बांधता है। इन संयता संयत के 37 प्रत्ययों में से 4 प्रत्याख्यान और 11 असंयम प्रत्ययों को कम कर देने पर, ये 11 कौन से थे असंयम के? 5 स्थावर संबंधी प्राणी असंयम था और 6 इंद्रिय यानी इंद्रिय असंयम था, वो सब यहाँ निकल गया। शेष 22 प्रत्यय रहते हैं, उनमें आहारक और आहारक मिश्र को मिला देने पर, ये तो योग है ना, दो योग किसी जीव को होगे, 24 प्रत्यय होते हैं। इन प्रत्ययों से प्रमत्त संयत विवक्षित 16 प्रकृतियों को बांधता है। अभी इनमें से सातवें वाले को क्या करना है? मिथ्यात्व नहीं है, अविरति नहीं, कषाय उतने रहेंगे कि कुछ कम होगे? उतने ही है। और योग दो हमने बढ़ाए थे, वो सातवें वाले को आहारक आहारक मिश्र योग नहीं होता है, तो अभी यहाँ 13 और 9 22 ही रह जाएंगे। तो इन 24 प्रत्ययों में से आहारक द्विक को कम कर देने पर 22 प्रत्यय होते हैं। इन प्रत्ययों से अप्रमत्त संयत और अपूर्वकरण प्रविष्ट उपशमक एवं क्षपक जीव विवक्षित 16 प्रकृतियों को बांधते हैं, क्योंकि आठवें गुणस्थान वाले भी यही पोजीशन होगी, सातवें में भी और आठवें में भी, क्योंकि कोई अन्य कषाय भी नहीं चले जाते, योग भी उतने ही है उसके। नौवें में कुछ अंतर पड़ेगा? हाँ, नौवे गुणस्थान में पहले उसके भाग करने पड़ेंगे, पहले भाग में तो वही पोजीशन रहेगी, दूसरे भाग में वेद नहीं रहेगा, है ना, तीनों वेद का उदय मिट जाएगा, फिर क्रम से क्रोध गया, मान गया, माया गए, इस तरह से जाएंगे। हाँ, लोभ रहेगा ना अंतिम भाग में। तो देखो अभी हम यहाँ कुछ अलग अलग लिखा है कि नहीं पता नहीं है, पहले यहाँ पढ़ते हैं, अगर नहीं लिखा तो हम देखेंगे। इन्हीं प्रत्ययों में से और फिर मिलाना ना, दो आहार के दो मिलाना, हाँ, चार और ग्यारह पंद्रह हुए। पंद्रह निकालना है और दो मिलाना है, तो तेरह तेरह कम कर दो ना डायरेक्ट। अब देखिए, अब नौवे गुणस्थान की बात देखेंगे हम। पहले यहाँ ऊपर आठवां लिखते ना, तो आठवें में कषाय कितने थे? चार संज्वलन और नौ नौ कषाय, तेरह थे बराबर, और योग नौ थे बराबर। आठवें गुणस्थान में हमने 22 देखे थे ना, 13 9 22। नौवें गुणस्थान में क्या होगा? 6 हास्य रति वगैरह उदय की विच्छित्ति हो जाती है, यानी अभी सत्ता में से भले पड़े हो, उदय नहीं है उसके, तो नौवें गुणस्थान में से 6 कम हो जाएंगे। पहले में पहले 13 में से 6 कम जाए हो जाएंगे कि कितने रह जाएंगे? 7 रहेंगे ना, सात कषाय रह जाएंगे और योग तो उतने ही रहेंगे। हाँ, तो देखो यहाँ क्या लिखते हैं, दूसरी लाइन। पहले हमने देखा था 22 प्रत्ययों से बांधता है, आठवें गुणस्थान वाला 22 प्रत्ययों से बंद करता है। इन्हीं प्रत्ययों में से, यानी इन्हीं 22 में से 6 नौ कषायों को अलग कर देने पर 16 प्रत्यय होते हैं। 9 और 7 16, नौवे गुणस्थान के स्टार्टिंग की पोजीशन है ये। अभी वेदों को नहीं निकाला है उसमें से, 6 नौ कषायों को अलग कर दिया है। अब तीन वेद चले जाएंगे उसमें, या एक एक वेद को निकालेंगे देखेंगे। हाँ, इनमें से, हाँ ये 9 7 16 हुई ना, इनमें से नपुसक वेद को अलग कर देने पर 15 होते हैं। नपुसक वेद का पहले वो उपशामक हो या क्षपक जो कुछ है उसको अलग कर देने में 15 होते हैं। इन प्रत्ययों से द्वितीय अनिवृत्तिकरण विवक्षित प्रकृतियों को बांधता है। द्वितीय अनिवृत्तिकरण यानी दूसरे भाग वाला। इनमें से स्त्री वेद को कम कर देने पर 14 होते हैं। इन प्रत्ययों से तृतीय अनिवृत्तिकरण विवक्षित प्रकृतियों को बांधता है। इनमें से पुरुष वेद को अलग कर देने पर 13 होते हैं, यानी क्रम से नपुसक वेद, स्त्री वेद और पुरुष वेद इनको घटाया, यानी एक नपुसक वेद गया 6 रहे, स्त्री वेद गया 5 गए और पुरुष वेद भी गया तो 4, यानी संज्वलन क्रोध मान माया लोभ रह गए। इसमें से भी एक एक का उदय मिटता चला जाएगा। अलग अभी 13 रह गए। इन प्रत्ययों से चतुर्थ अनिवृत्तिकरण विवक्षित प्रकृतियों को बांधता है। पुनः इनमें से क्रोध संज्वलन को अलग कर देने पर 12 होते हैं। इन 12 प्रत्ययों से पंचम अनिवृत्तिकरण विवक्षित प्रकृतियों को बांधता है। पुनः इनमें से मान संज्वलन को कम कर देने पर 11 होते हैं। इन प्रत्ययों से छठा अनिवृत्तिकरण विवक्षित प्रकृतियों को बांधता है। यह उदय की अपेक्षा से भी बात की है। इनमें से माया संज्वलन को अलग कर देने पर 10 होते हैं। इन प्रत्ययों से सप्तम अनिवृत्तिकरण विवक्षित प्रकृतियों को बांधता है। इन्हीं 10 प्रत्ययों से सूक्ष्म सांप्रायिक भी विवक्षित 16 प्रकृतियों को बांधता है, क्योंकि वहां भी लोभ है ना, लोभ का उदय चल रहा है। कौन से है 10? एक लोभ और 9 योग, इनसे वहां बंद चल रहा है। इन 10 प्रत्ययों में से लोभ संज्वलन को अलग कर देने पर 9 प्रत्यय होते हैं। ये 9 उपशांत कषाय और क्षीण कषाय जीवों के द्वारा बांधी जाने वाली, जाने वाली चाहिए, जानने वाली नहीं, जाने वाली। और साना का साता करना, साता वेदनीय प्रकृति के प्रत्यय है। 11वें गुणस्थान में ये सूक्ष्म लोभ भी नहीं है, और ना ही क्षीण कषाय गुण स्थान में, तो वहाँ बंध है कि नहीं है? तो वहाँ साता वेदनीय का है, तो उसमें बंध का कारण क्या है? तो कौन है? ये योग है ना वहाँ पर। तो 11वें 12वें गुणस्थान में ये 9 प्रत्ययों के द्वारा एक साता वेदनीय प्रकृति बनती है। हाँ, 12वें में भी 9 है। हाँ है ना, सब है। वो 13वें में भी चेंज हो जाते हैं, 2 होते हैं। हाँ, इनमें से मध्यम 2-2, ये आपके प्रश्न का उत्तर आया। अर्थात मृषा और सत्य मृषा मन और वचन योगों को अलग करके, सत्य मृषा यानी उभय, यानी असत्य मनोयोग या मृषा मनोयोग और उभय मनोयोग, और वैसे ही वचन योगों को अलग करके औदारिक मिश्र व कारमाण का योग को मिला देने पर 7 होते। अभी ये 13वें गुणस्थान की बात कर रहे हैं। 11वें 12वें में क्या था? कुछ कषाय वगैरह कुछ नहीं, 9 योग थे। ये 11वें और 12वें की बात थी। अब 13वें में क्या है? ये 4 मनोयोग 4 वचन योग थे, उसमें से बीच वाले 2 यानी असत्य यानी मृषा और सत्य मृषा यानी उभय, 2 कम करना मनो के भी और वचन के भी, 2-2 4 कम हुए, यानी 4 कम हुए तो 5 हुए, और कुछ मिला ना उसमें औदारिक मिश्र। क्यों मिलाना, कब होता है? हाँ, समुद्घात में। कौन से समुद्घात में? केवली नहीं, उसका नाम बताना पड़ेगा। कपाट में औदारिक मिश्र की बात है, कपाट में औदारिक मिश्र है, और प्रतर और लोकपुरण काम कारमाण है, तो वो 2 मिलाएंगे तो 7 योग हो जाएंगे वहां। इसलिए 7 होते हैं। इन 7 प्रत्ययों से सहयोगी केवली को बंध है, उसमें प्रत्यय कितने हैं? तो ये 7 है। तो 7 एट अ टाइम हो गए कि नहीं हो गए? योग एक समय में कोई एक ही हो सकता है। हाँ, ये कितने हो सकते हैं उसकी टोटल गिनाई है। इन 7 प्रत्ययों से सहयोगी जिन एक साता वेदनियों को बांधते हैं। ओहो, समय हो चुका, ऊपर गया। इसकी उपसंहार गाथा भी हम कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा दे तो।